श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 4 और 5 और 6। अशास्त्र विहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तो ये आप श्लोक को देख सकते हैं, अशास्त्र विहित घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः, अर्थात जो तप शास्त्र में नहीं लिखा है उस घोर तपस्या को करने में ये लोग लगते हैं। क्या इसका अर्थ आप देख पा रहे हैं? ये जनाहा घोर तप्यन्ते, घोर तप, घोरम तपो तप्यन्ते अशास्त्र विहितम। जो लोग जो शास्त्र में नहीं बताया गया है उस प्रकार के घोर तपस्या को करते हैं। एक पहला गुण क्या देख रहे हैं असुरों का? घोर तपस्या करते हैं तो शास्त्र में लिखी नहीं है। एग्जाम्पल याद है किसी को? हिरण्यकश्यपु, नहीं नहीं भस्मासुर, पर्टिकुलरली भस्मासुर शिव जी के लिए उपासना कर रहा था। शिव जी आके कहते हैं कि बेलपत्र और जल से मैं संतुष्ट होता हूं, अपना मांस क्यों डाल रहे हो उसमें, अग्नि में? ठीक है। दंभ अहंकार संयुक्त, दंभ और अहंकार से संयुक्त, फिर से एग्जाम लिया जाएगा। दंभ का अर्थ क्या होता है, एग्जैक्ट अर्थ बताइए। माइक पे बोलिएगा प्लीज, माइक दीजिए प्रोजी को।
अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाना है सबके सामने,
वेरी गुड, केवल धर्म का आडंबर करना ताकि लोग माने कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, अहंकार का मतलब यही होता है मान की इच्छा रखना, संयुक्त मतलब युक्त होकर। काम राग बलान्वित, कामना से राग से बलान, अब इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। और पहले मैं श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को समझा देता हूं तो अपने आप ये सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे, फिर इसका फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखते हैं। पहली लाइन वो बोल रहे हैं, पहली बात ये बोल रहे हैं कि इससे पहले वाले श्लोक में बताया था भगवान ने, नहीं इससे पहले चैप्टर में बताया था कि शास्त्र की विधि को जो पालन नहीं करता है वह कभी भी निम्न योनियों से मुक्त नहीं हो सकता। याद आ रहा श्लोक आप लोगों को? यह शास्त्र विधि मुस्तर्ज्य वर्तते कामकारता। ठीक है, अब इस चीज को भगवान और इन दो श्लोकों में पुष्ट कर रहे हैं। तो क्या वहां पे बोल रहे हैं घोरम, घोरम का अर्थ है कि वह तपस्या करती हैं जिसके द्वारा बहुत कष्ट होता है दूसरों को। कहां था शब्द? अशास्त्र विहितम घोरम, तो घोरम का अर्थ है दूसरों को बहुत कष्ट होता है। सिगरेट फूंकना तपस्या नहीं है लेकिन अच्छा, और अशास्त्र विहितम को समझाते हैं कि वह अपने ही खुद के ही शास्त्र लिख लिखते हैं जो कि वेदों के विपरीत होते हैं। अशास्त्र विहितम का अर्थ है अपने खुद के शास्त्र वो लिख लेते हैं जो कि वेद के विरुद्ध है। बलम का अर्थ है जिद्दीपने से, जैसे आप देख सकते हो भस्मासुर था जिद्द करके भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाह रहा था, जिद्द करके नहीं आएंगे तो मैं गर्दन भी काट दूंगा। और ये बल दिया कौन किसके द्वारा जाता है? तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ही इनको ये बल देता हूं, ये जिद्दीपना मैं स्वयं ही देता हूं ताकि वह अपनी इच्छाओं को जो कि भोग की विषयों के लिए हैं उसको पूर्ण कर सके। जैसे आप फिर वही भस्मासुर एग्जाम्पल ले लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो उसकी भोग की इच्छा थी उसके लिए जो बल मिल रहा था भाई मांस काट काट के डालना अग्नि में, वो कहां से मिल रहा है, कितना घोर कितना कष्ट देने वाला है। तो वह शक्ति भी भगवान ही देते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं भूत ग्रामम शरीरस्थम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो हमारे भूत, जिन भूतों से हमारा शरीर बना है, पंच महाभूत हैं। तो कह रहे हैं भूत ग्रामम, ग्रामम का मतलब होता है समुदाय, ग्रामम का मतलब ग्राम समझते हैं, ग्राम ग्रामीण समुदाय। तो भूत ग्रामम का अर्थ क्या हुआ? पंच महाभूत जो हैं जिससे हमारा शरीर बना है, जो शरीरस्थम शरीर में स्थित जो पंच महाभूत हैं उनको कर्षयंतः इतनी तपस्या करते हैं कि वह सुख के खत्म हो जाए। क्या अर्थ समझ पा रहे हैं आप? कर्षयंतः शरीरस्थम भूत ग्रामः चेतसः, ये स्पष्ट हो रहा है? भूत ग्रामम का अर्थ क्या हुआ? भूत मतलब क्या होता है? पंच महाभूत। ग्रामम मतलब समूह या समुदाय, जिससे हमारा शरीर जो हमारे शरीर में स्थित हैं उनको कर्षयंतः उनको बहुत कष्ट देते हैं। जैसे कि फिर वही भस्मासुर एग्जांपल है कि उसका शरीर जो है वो काट काट के डाल रहा था, तो उसे शरीर को कष्ट होता है, अननेसेसरी वह कष्ट दिया करते हैं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है और वो कहते हैं माम चैवांतः शरीरस्थम, कि मुझको भी कष्ट देते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि भगवान तो परमात्मा स्वरूप है, उन्हें कैसे कष्ट देते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? भगवान को कष्ट देने का मतलब क्या है? तो श्रील बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि वह भगवान की कृपा को छोड़ देते हैं। दे लूज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इतनी तपस्या तो करते हैं लेकिन भगवान की कृपा नहीं मिलती, इसलिए क्योंकि भगवान को प्रसन्न नहीं करते,
उनको कष्ट होता है भगवान।
यही इसका अर्थ समझ देना चाहिए, भगवान उसे प्रसन्न नहीं होते। कष्ट का मतलब उस तरह से नहीं सोचना चाहिए जैसे कि हम सोच रहे हैं कि भी हम परेशान हो रहे हैं। आप जानते हो कि परमात्मा कभी परेशान नहीं होते उस तरह से, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। आपके विपरीत जानते हैं ना, जब भगवान के भक्त लोग आकर कथा करते हैं आपस में चर्चा करते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं स्वयं उनके हृदय के अज्ञान को नष्ट कर देता हूं। और आप यहां देख रहे हैं बलम शब्द का अर्थ हमने क्या समझा था, कि मैं स्वयं उनको बल देता हूं ताकि वो काम राग जो उनका है उसकी वो इच्छा को पूर्ण कर सके। तो भगवान दोनों जगह जैसी इच्छा व्यक्ति कर रहा है वैसा उसको प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन यहां पे माम चैवांत शरीरस्थम कर्षयंतः का अर्थ है भगवान को भी ये कष्ट देते, भगवान को सुखी नहीं करते, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। ये देखना चाहिए कि भगवान सम है, सबके तरफ बराबर है, लेकिन इस प्रकार के असुर गुण भगवान को पसंद नहीं आते। आप ये नहीं कह सकते कि जीव तो भगवान को प्रिय है, प्रिय है, लेकिन जब जब गुणों में फंसा हुआ है ऐसे असुर गुण है तो भगवान कहते हैं हमको भी पसंद नहीं आते। इज अ पर्सन, ये एक व्यक्ति है, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आकाश की तरह एक मैटर मात्र नहीं है भगवान, दिखना चाहिए। और अचेतसा का अर्थ है कि उनके पास शास्त्र में शास्त्र विवेक नहीं है, उनकी चेतना पूरी तरह से लुप्त है कि शास्त्र क्या कहता है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्लोक याद आ रहा है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहार्हसि। 16 अध्याय के आखिरी श्लोक में हमने देखा था कि शास्त्र के अनुसार सीखो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यहां क्या देख रहे हैं? अचेतस। अचेतस शब्द कहां पे आप देख पा रहे हो? छठा श्लोक की पहली लाइन है। तो अचेतस मतलब उनको शास्त्र का विवेक नहीं कि क्या करना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, प्रथम स्कंद में किसी को याद है श्लोक? बहुत सिंपल श्लोक है, ये भी है, अतः पुंभी दुजास्तेष्टा के बाद वाला श्लोक क्या है? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। 4 चीजों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में बोलने से, उनका स्मरण करने से, उनकी पूजन करने से। कितना सिंपल है। तो वो चीज ना करके घोरम तप्यन्ते, तपस्या में लगे हुए हैं जिससे उनके शरीर को कष्ट होगा और भगवान भी सुखी नहीं होगा। तो ये असुर का लक्षण है। और वो कह रहे हैं भगवान, ये अच्छा है, भगवान कह रहे हैं निश्चय। निश्चय का अर्थ समझते हैं आप लोग? हिंदी में निश्चय का अर्थ क्या होता है? निश्चित, पक्का। तो भगवान कह रहे हैं पक्की बात है कि लोग असुर हैं, क्योंकि ये वेदों का नियम नहीं पालन करते, तो पक्की बात है कि ये असुर है। तान विद्या असुर निश्चयन, विद्या मतलब होता है समझो जानो, तान विद्या असुर निश्चयन, निश्चित रूप से मानिए कि ये लोग असुर है। स्पष्ट हो गया? तो इसलिए क्या सारे धर्म बराबर हैं? नहीं, जो वेद की बात को नहीं मानते, वेद के नियम को नहीं मानते हैं, तो स्पष्ट रूप से तान विद्यान असुर निश्चयान, भले उनका आप असुर बोलिए मत, लेकिन भगवान बोल रहे हैं निश्चित रूप से वे असुर है। और इसको भगवान ने गीता में 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं? 4 प्रकार के लोग उनके पास नहीं आते हैं, मूढ़ा अनाधमा और ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। तो आसुर भाव एकदम स्पष्ट यहां पे बता रहे, वेद को नहीं मानना, शास्त्र को नहीं मानना, ये स्पष्ट हम यहां पे देख रहे हैं। अब ये एक बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग बात कि हाँ, एक और बात ये बोलते हैं कि जो असद गति निम्न योनियों में जाना, पिछले श्लोक में, पिछले चैप्टर में बताया था आश्रिम योनि मापन्नम, उनको ये लोग उनसे बच नहीं सकते। तो क्या कारण बता सकते हैं, क्यों नहीं बच सकते? माइक भी बोल सकते तो अच्छा रहता। यस, श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि असुर योनि में जाना इनके लिए अवश्यम भावी है।
शास्त्र वृद्धि का फॉलो नहीं कर रहे, तो
ना कर रहे हैं ना करना चाहते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो लोग यक्ष राक्षस और प्रेतों को पूजा करते हैं अपने स्वभाव जनित श्रद्धा के द्वारा, तो वह उन वैदिक अनुयायियों की कृपा के द्वारा सीख सकते हैं और अपने आसुरिक प्रवृत्ति को त्याग सकते हैं। जो इससे पहले श्लोक क्रमांक 4 में हमने सीखा था कि जो लोग अन्य लोगों की पूजा करते हैं अपने स्वभाव से उत्पन्न हुई जो होती है श्रद्धा, कदाचित अगर वो उन लोगों का संग करते हैं जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं, तो उनकी कृपा से वह नियमों का पालन करके सही हो सकते हैं। और इसमें भी जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वह काफी संभावना है कि उसको वो जब वैदिक अनुयायियों के संग करेंगे तो उसको स्वीकार कर लेंगे कि वो सत्वगुण में रहते हैं। लेकिन एक मिनट, हाँ, लेकिन जो रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं उनकी संभावना थोड़ी कम रहती है। ये सारी बातें बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? एक बात, जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं क्योंकि वो सात्विक होते हैं, कदाचित वह अगर भक्तों का संग करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तो उनके लिए आसान है क्योंकि सत्व में है सिद्ध चित्त। लेकिन जो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं उनको अधिक कृपा चाहिए, तुरंत नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि उनका स्वभाव घोरम है, होता है। यस, हाँ, डेमीगॉड की पूजा करने वाले भगवान की पूजा करने लगते हैं, और सब प्राय देखते हैं। हमारे इस छोटे संघ में भी कल हमने चर्चा किया था कि एक भक्त दुर्गा जी की पूजा करते थे, कोई हनुमान जी की पूजा करता था, आप किसी करते थे? स्वयं की पूजा करते थे। आप सभी लोग किसी ना किसी की तो पूजा करते रहे होंगे, कोई सरस्वती जी की पूजा करते थे ऐसे करके, और फिर जब भगवान के बारे में मालूम चलता है तो सहज स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, गीता में लिखा है, हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। ये बहुत भारत में तो प्राय इसी प्रकार के लोग हैं। पूजा ना करने वाले तो कम होते हैं, थोड़ा बहुत पूजा तो हर कोई करता है, और भगवान के बारे में सुन करके लोग सीख लेते हैं। जो एकदम घोर हैं, आपने किसी क्या कहते हैं मांत्रिक तांत्रिक को भक्त बनाया आज तक? जो बिल्कुल शब उपासना कर रहा है उसकी उसको भक्त बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत मुश्किल है उसके लिए भक्त बनना। हमको नहीं समझा सकेगा, लेकिन कठिन है। अब वो समझ रहे ना क्यों कठिन है, रजगुण तमगुण में इतना फंसा हुआ है व्यक्ति वो, उसके लिए उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप पढ़िए, अनुवाद पढ़िए दशरथी प्रभु। ऑन कर लीजिए।
तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की, अच्छा, जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं।
लेकिन ये समझ में आ रहा ना, परमात्मा को कष्ट पहुंचाने का अर्थ क्या है? परमात्मा की कृपा से वह वंचित रहते हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा शरीर के कष्टों से प्रभावित हो जाते हैं। एक और उसको आप उदाहरण ले सकते हैं कि भगवान ने सुंदर गिफ्ट दिया है मानव जीवन का, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता इस गिफ्ट का, वो वेस्ट कर रहा है, फालतू कह सकते हैं, हाँ, व्यर्थ कर रहा है। ये बात भी, यस, बढ़िया।
कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है।
जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कील के ऊपर बैठना। हाँ, बहुत सारे लोग कील के ऊपर बैठ जाते हैं, उससे क्या मिल जाएगा? अच्छा, टांग, एक टांग पे खड़े हो गए, सोएंगे नहीं, या 12 साल तक कोई सो ही नहीं रहा है, इसका कोई,
मैंने कहीं सुना गर्मी में आग लगा के घेरा,
हाँ,
ठंडी में बहुत ठंडे पानी में चले जाते,
कहते हैं पंचाग्नि तापना। हाँ, कह सकते हैं वानप्रस्थ वालों के लिए है, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन वस्तुतः इससे सिर्फ कुछ से कुछ होता क्या है? अगर आप भगवान की भक्ति के बारे में बात करें तो क्या उसका भक्ति में, माइक बोलिए, अच्छा चलिए मान लीजिए पंचाग्नि तापना तो बोल सकते हैं, इन कील पे बैठना कौन सी तपस्या? या फिर प्रभुपाद जी पर एग्जाम्पल दिए है ना एक जगह की पॉलिटिकल कारण कारण के लिए अनशन करना क्या फायदा?
मैं कुछ जगह सुना था लेक्चर में कहीं 12 साल तपस्या करके पानी के ऊपर चला था, प्रभुपाद जी बोले कि मैं 2 रुपया दे के चला जाऊंगा।
यस यस यस, तो इस प्रकार की सिद्धि से फायदा क्या हो जाएगा?
यस, बल्कि हृदय और कठोर हो जाता
है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हृदय कठोर हो जाता है तपस्या करके। यस बढ़िया।
उदाहरणतः किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है।
अभी अभी बोल ही रहे थे इस बात को। यस,
शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भागवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से असुर हैं। उनके कार्य
इंटरेस्टिंग है ना कि समाज के लोग बोल सकते हैं कि देखो भाई वो कितना तप किए, लेकिन समाज की ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। एकदम भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, तान विध्यान असुर निश्चय, निश्चित रूप से वो असुर है। यस,
उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं, समान जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व अहंकार काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना हुआ है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है।
फिर से समझाइए, दशरथ जी प्रभु बताइए परमात्मा को कष्ट पहुंचता है अर्थ क्या है?
भगवान ये सुंदर मानव शरीर जो है भगवान अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, स्वयं की प्राप्ति के लिए दिया है, और उसका प्रयोग वो भगवत प्राप्ति न करके कठिन तपस्या कर रहे हैं, इससे परमात्मा को दुख होता है कि मैंने ये सुंदर शरीर जो है भगवान की अपनी प्राप्ति के लिए दिया था,
वेस्ट कर रहा है,
वेस्ट कर रहा है।
और ये कौन से शब्दों से इंगित होता है संस्कृत में? माम चैवान्ता शरीरस्थम। और शरीर को कष्ट देता है वो कौन से श्लोक से शब्दों में से दिखता है?
शरीरस्थम तान
हाँ कर्षय भूत ग्रामम अचेतसा। यस ओके,
परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाता है। ऐसे अभेद उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या यदि आदि से निश्चय ही अन लोगों की शांति भंग होती है।
मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अगर भाई मर जाएगा तो लोग उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। हाँ, ये भी इसी कारण से शिवजी भी आए थे, आपको याद हो तो। ऐसा नहीं था वो बसपासुर से प्रेम कर रहे थे, शिवजी से सोच रहे थे मर जाएगा तो अब चलो कुछ तक कृपा कर देते, और फिर वो बोलते हैं कि मैं तो बेल और जल से संतुष्ट हो जाता हूं, तुम इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत थी? पढ़िए।
उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। असुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा की पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं।
एक याद रखिए, जब भगवान तपस्या के बारे में बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, आपको याद आ रहा है कौन सी श्लोक की बात कर रहा हूं मैं?
तपो
दिव्यम। और उसका फायदा क्या बोलते हैं भगवान? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। तो उसका अर्थ क्या है कि दिव्य तपस्या करेंगे तो हमारा सत्व शुद्ध होगा, उसे सुख प्राप्त होगा। और यहाँ इसका बिल्कुल विपरीत दिख रहे हैं, वो खुद भी दुख होगा और दूसरों को भी कष्ट देगा,
बाद में भी दुख होगा,
हमेशा ही दुख भोग रहा है। ये घोर तमोगुण का लक्षण है कि दुख ही दुख प्राप्त होता है, शुरुआत में दुख और बाद में भी दुख। ये बात ओके
द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। समान मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की अपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं।
आपको याद है अभी हमने चर्चा किया था ना, अचेतसा का अर्थ क्या है? शास्त्र का कोई समझावट उनको नहीं है, बिल्कुल समझावट कुछ भी समझ, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं कि करना क्या, ये ऐसे करना वैसे करना ऐसे करना।
मनुष्य को सदैव असुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, भगवान ऐसे लोगों को असुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं।
ये इंटरेस्टिंग है कि भगवान के अरेंजमेंट से वो असुरों के पैदा होंगे, फिर हायर लेवल के असुर बन जाएंगे। उनकी जो आसुरी प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे भगवान भक्तों को, अगर वो सिद्ध नहीं होते तो भक्तों का जन्म देते ताकि भक्ति बढ़े, तो अगर ये असुर सिद्ध नहीं होते, परफेक्ट असुर नहीं बनते, तो कहते हैं और असुरों का जन्म लो, अच्छे से असुर बन जाओ, ये चाहते बनो जाकर। माइक पे
लास्ट में भगवान के हाथों से मर के फिर शुद्ध।
हाँ, अगर लास्ट में अगर भगवान के हाथों से मर के शुद्ध हो जाते ठीक है। कुछ बोल रहे थे माइक पे? कोई बात नहीं, आपके मुंह से शास्त्र ही निकलता है। घबराई
आज क्लास में सुना था कि जैसे जैसे डाकू का बेटा महा डाकू होता है। ये जो बता रहे थे।
अच्छा, ये मुझे फिर भी समझ में नहीं आता है, वह अद्भुत लीला करते हैं कि हिरण्यकश्यप क्या प्रहलाद कैसे पैदा हो गए। वैसे हम कथा जानते हैं कैसे पैदा हो गए, लेकिन अद्भुत लीला करते हैं कभी कभी उद्धार करने के लिए। वो सब लीला है, चलिए वो सब छोड़िए, उसको अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? पढ़िए।
भगवान ऐसे लोगों को असुर व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बात करते हैं। फलस्वरूप भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर असुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूट कर अंतोगत व परम गति को प्राप्त होते हैं।
देखिए, ये बात भी श्रीला बलदेव जी बताते हैं कि नहीं बताते हैं? कि हाँ, वही चीज प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कदाचित अगर वैदिक शास्त्रों की बात उनके सामने रखी जाए और किसी तरह से वो स्वीकार कर लें, तो फिर उनका आसुरी जीवन समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, प्रहलाद वाली बात इसलिए सही नहीं, नहीं देखिए, प्रहलाद महाराज भक्त बन गए इसलिए सही, आपकी बात सही नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज एक अलग कैटेगरी के व्यक्ति हैं। प्रहलाद महाराज मतलब आधे आंशिक रूप से स्वरूप सिद्ध है, नित्य सिद्ध है, आंशिक रूप से साधना सिद्ध है, उनका एक अलग कैटेगरी है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी, ऐसे नहीं थे असुर थे और आसुर प्रवृत्ति नहीं थे। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन पहले से ही भक्त हैं, पहले से ही भक्त हैं। उन्होंने उनके बारे में बताया जाता है कि पिछले जन्म में उन्होंने अनजाने में नरसिंह देव जी का व्रत किया था, कि नरसिंह चतुर्दशी कर ली थी, तो इस कारण से आगे जाके भक्त बने थे। वो एक अलग बात है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे थी, मैं कल पढ़ रहा था एक पत्रिका है, तो वो बोल रहे थे प्रभुपाद जी कि जब भगवान के भक्त वैदिक ज्ञान को, वैदिक जो ज्ञान है उसको स्वयं स्वेच्छा से प्रचार करते हैं, तब लोग जान पाते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है।
स्वेच्छा से, अपनी इच्छा
से, ये बहुत महत्वपूर्ण। आज भी जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ, तो हम उसमें चर्चा नहीं करना चाहते क्या अनुभव हुआ, लेकिन कहने का ये चाहते हैं कि लोग पूरी तरह ज्ञान में हैं, तो जब तक हम उनको मौका तो दें कम से कम भगवद गीता या कुछ एक बार सुनने का, समझने का, और ये हमारी स्वेच्छा से होना चाहिए। जो भक्तों को भगवद गीता समझ में आ रही है वो स्वेच्छा से समझाएं लोगों को। हम सोच सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम अयोग्य हैं, वो ठीक है, वो सब मान रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारी नहीं है। समझ में आ गया? ये जो भी ज्ञान है भगवान का ज्ञान है, और भगवान का ज्ञान दूसरों को हम देंगे, पहली बात तो हम स्वयं शुद्ध हो जाएंगे, भगवान उससे प्रसन्न होंगे, और आप देख सकते हैं जैसे इस हम परपट में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज उनका जो फ्यूचर है, इंग्लिश समझ गए ना, मतलब उनका जो भविष्य है बिल्कुल नितांत अंधकारमय है। तो हमको दो चीजें करनी है, हमें स्वयं समझना है और दूसरों को समझने का मौका देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो अलग बात है कि हमारी कितनी शक्ति है, कितने लोगों को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो एक आगे की बात है। लेकिन शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति जीवन जीने लग गया तो फिर उसकी सिद्धि परफेक्ट है, ये विश्वास हमको भी होना चाहिए, और इस कारण स्वेच्छा से कुछ हमें भगवद गीता का प्रचार करना चाहिए। आप कुछ पूछ रहे, बोल रहे थे? माइक पे बोलिए।
नरसिंह चतुर्दशी पूर्व जन्म में कहां से आ गई प्रहलाद महाराज?
एक है
मतलब उनका अवतार तो बाद में हुआ ना?
नहीं नहीं, अब ये नरसिंह देव हमेशा रहते हैं, भगवान नरसिंह देव का लोक भी है, नरसिंह प्राण पढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए नरसिंह देव जो हैं वो चतुर्भुज रूप में भी हैं।
देवताओं ने पहले तो नहीं देखा था ऐसा रूप, बताते
हैं नरसिंह देव जो नरसिंह देव नरसिंह बोल रहे हैं नरसिंह रूप जो है वो विष्णु रूप है।
वो हमेशा नित्य
भगवान हमेशा मतलब इस तरह से प्रेजेंट होने आगे की बात है जो आप सोच रहे हो ना जैसे आधे शरीर और आधा इंसान का शरीर आधा शेर का शेर वो तो यहाँ पे प्रकट भी कर रहे हैं बन विष्णु स्वरूप में हमेशा रहते हैं। नरसिंह वामन जैसे दामोदर तो दामोदर विष्णु स्वरूप का भी नाम है और दामोदर भगवान के छोटे रूप का भी नाम है तो भगवान विष्णु की उपासना हमेशा से रहती है। ये कहानी की कथा जो है ये जहां तक मुझे स्मरण रहा नरसिंह पुराण में पढ़ सकते हैं लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आप उतना पुराना ना देखिए जन्म लेकिन ये तो स्पष्ट देखते हैं ना कि नारद मुनि का संग प्राप्त होता है। तो बस खाली कहने का अर्थ ये है कि हमें भगवान के बारे में शास्त्र से लोगों को बताना चाहिए तो उसके द्वारा उनकी आश्चर्य प्रवृत्ति धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। ये बात समझ में स्वीकार करना चाहिए और इसीलिए वो कह रहे हैं अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। कुछ और बोलना चाहते हैं यहाँ पे स्पेशल स्टॉप। नेक्स्ट श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, फिर भी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
जैसे प्रभुपाद जी के संबंध में हम ये देख सकते हैं कि जितने भी उनके यूरोप के डिसाइपल थे वो लगभग इसी स्थिति में थे और उन्होंने सिर्फ प्रभुपाद जी के संपर्क में आए बहुत भाग्यशाली हुए और लगभग सबका जो है बहुत अच्छा हुआ।
यस बस यस यस और कम से कम शुरुआत तो अच्छी हुई।